ओम शांति। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी बाबा के आदि रत्न हैं, जिन्होंने साकार मात पिता की पालना ली है। आप बड़े ही सरल चित्त, स्नेही, सहयोगी, यज्ञ प्रति ईमानदार और अथक सेवाधारी है। 1961 में अपनी पढ़ाई पूरी कर साकार बाबा के वरदानी बोलों के कारण ही आप ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए। 1981 में आपको ज्ञानामृत तथा वर्ल्ड रिन्यूअल के संपादकीय का भार सौंपा गया। आपके लिए दो लाइन में कहना चाहूंगी, बाप दादा के लाल हो आप कई हजारों में, क्योंकि आप यज्ञ की विशेष आत्मा हैं। बाप दादा के लाल हो आप कई हजारों में, कोटों में कोई हो आप धरती के चैतन्य सितारों में, तब तो स्वयं भगवान रखता है आपको अपनी भुजाओं में, अपनी भुजाओं में। ऐसे महान व्यक्तित्व का हम स्वागत करते हैं। और अभी हम सुनेंगे मम्मा बाबा के साथ आपके अनुभव।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी मीठे मीठे बाबा के लाल हम सभी हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, देखो इस वक्त 7 बिलियन, उससे भी ज्यादा होंगे आप तो, जीवात्मा सृष्टि पर घूम रही हैं, विचर रही हैं। उनमें से हम कितने हैं देखो, 9 लाख, 10 लाख, इतने कहेंगे। और आप जैसे तो बहुत कम होंगे, जो बाबा के घर में मधुबन में आकर के बाबा की ऐसी जो कर्म भूमि है, तपस्वी भूमि है, जहां बाबा के चरण पड़े, बाबा मम्मा के चरण पड़े, ऐसी जगह पर आप तपस्या करने, भट्टी करने के लिए आए हैं, बहुत कम होंगे, हजारों भी नहीं होंगे शायद। तो कितने हम सौभाग्यशाली है, बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि बाबा ने हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ढूंढ कर अपना बना लिया है ना। ऐसी बात हमने नहीं ढूंढा कोई, उसको हम तो जानते नहीं थे, ढूंढे तब तो कुछ चीज पता लगे ये चीज खोई गई है, मालूम ही था। रियली उसने, बाबा ने कहीं किसी प्रकार प्रदर्शनी कराई होगी, किससे मिलाया होगा, कहीं पर्चा मिला होगा, किसी ना किसी प्रकार से हमको ढूंढाया, उसने ही ढूंढाया, हमें भी बाबा ने ढूंढा। रियली कहते हैं, हम तो कोई इतना पुरुषार्थ नहीं करते थे, ना कोई भक्ति करते थे। हाँ बचपन में की थी, बहुत पुराने 10 साल के थे तभी, मुझे याद है हम जब ध्रुव की, प्रहलाद की कथाएं सुनते थे, हम भी एक दिन मंदिर पे जाकर के एक टांग पर खड़े होके ध्रुव की माफिक विष्णु को वो राम राम कुछ ऐसे बोलते रहते थे जो हमें इजी लगता था, तब तो की थी। और एक ये भी याद है, हम भागवत बहुत सुनी, भागवत रामायण महाभारत, सिंपल सिंपल किताबें जो हमारे सिंपल सहज वो रोचक हैं वो सुनी हुई थी। उसमें एक लिखा हुआ था कि जो हमारे कोई अगर मरने से पहले कोई जनेऊ नहीं डालेगा ना और मर गया वो नर्क में जाएगा, ऐसा हम सुना हुआ था। तो विशेष मैं अपने छोटे भाई और माता जी को लेकर के हरिद्वार में जनेऊ डालने के लिए गए कि हम मरने से पहले डलवा ले। तो देखो, लेकिन वहां लोगों को देखा, वहां के पंडों को देखा, वो देखा, ये तो बड़े अजीब किस्म के लोग हैं, गंगा पर रहने वाले, क्या इनका जीवन है, सत्यवास थे, पीने खाने वाले थे। मैंने देखा, आश्चर्य क्या, मैं इस गंगा में तो नहाना ही बेकार है। तो फिर हम आर्य समाज में जाके डलवाया। तो ऐसा धीरे धीरे करते करते इन लोगों के कनेक्शन में आते आते जो धर्म से आस्था थी वो कम होती गई, भक्ति भी छूट गई और पढ़ाई भी करते रहे। तो जब हम ऐसे इंजीनियरिंग में हम एडमिशन लिया था पटियाला में, हमारे पटियाला वाले भाई बैठे हैं, तो हम बड़े होशियार थे पढ़ाई में, फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट आते थे, हर क्लास में फर्स्ट स्कॉलरशिप होल्डर होते थे, कभी स्कॉलरशिप से कम नहीं था। तो वहां हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, बाबा कैसे बच्चों को पकड़ता है। तुम्हारे एक ओम प्रकाश भाई हैं जो आजकल इंदौर जोन के इंचार्ज हैं, वो भी 6 मास पहले ज्ञान में आए थे और बहुत वैराग था उनको कि क्या अविनाश तो सामने खड़ा है, अभी क्या पढ़ाई करनी है, इतनी मुश्किल पढ़ाई, 4-5 साल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो क्या अविनाश तो होने वाला है। लगता था, ये नहीं कि अभी लगता है, तब भी हम जब ज्ञान में आए तो विनाश सामने लगता था। और बाबा भी कहते थे बच्चे विनाश सिर पर खड़ा है, सामने खड़ा है, जल्दी करो। बाबा पुरुषार्थ के लिए कहते थे, देखो अभी एक दिन मुरली में आया था, बाबा ने क्या कहा, जब मैं शिव बाबा में प्रवेशता हुई, साक्षात्कार हुआ और एकदम बैराग आ गया, वो उसका सृष्टि का विनाश देखा तो बाबा को भी एकदम बैराग आ गया कि क्या आप तो जल्दी गए के गए। तो बाबा ने क्या किया, अपना सब कुछ, तन मन धन सब चीज इस यज्ञ में सुहा कर दी, देखो एक ट्रस्ट बनाया और दे दिया, कुछ अपने पास रखा नहीं, मकान मकान जो कुछ भी था। तो फिर बाबा ने उसी मुरली में कहा, बच्चे देखो, लेकिन फिर बाद में समझ आया कि तो राजधानी स्थापन होनी है, मुरली में था, देखो राजधानी स्थापन करने में तो टाइम लगता है, देखा आप। तो यानी ये तो ब्रह्मा बाबा को भी कुछ पता नहीं था, हम बताएं आपको, नहीं तो हम नहीं तो बाबा को बाद में मालूम पड़ा, ये तो राजधानी स्थापन होगी तो ये टाइम लगेगा उसमें, तब पता लगा। और उन्होंने भी अपना स्वाहा किया, तो बाबा ने ये कहा, इसीलिए हम भी जब ज्ञान में आए ऐसा लगता था कि गए के गए, विनाश हुआ के हुआ, हमारी दादियां तो बहुत पहले आ गए, बहुत पुरुषार्थ कर गया, हम तो पीछे रह गए, ऐसा लगता था। तो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो उसको भी बहुत वैराग था, हमारे भाई ओम प्रकाश जी को, तो वो हमारे बाई चांस उसका हमारा रूम नंबर 112-113 साथ था, थापन इंस्टीट्यूट था, बहुत बड़ा नया नया बना था, बहुत हमारा सर्वेंट भी, हमारा दोनों का कॉमन था, इस प्रकार के नजदीक थे। मैं उनको देखता था तो वो हमेशा साइलेंट में थे, ना किसी से बोलना, ना किसी से बात करना, ना गपशप लगाना, ना कॉमन रूम में आना, ना कोई खाने पीने पर देखो क्या करता है। तो उसको देख के अट्रैक्शन होती थी, भी आदमी कैसा है, किसे इतना बात ही नहीं करता किससे। तो मैं उनका दरवाजा खटखटाऊंगा तो 5 मिनट के बाद वो खोलते थे, मैंने कहा क्या बात है, तुम्हारे अंदर क्या खजाना तू छुपा के रखते हो, जो इतनी देर क्यों लगाते हो, दरवाजा खुला रहना चाहिए आपका। वो क्या था, अपनी मुरलियों को संभाल करके, मैगजीन को संभाल करके बिस्तर के नीचे रखता था ताकि कोई ये काले के लड़के हंसी मजाक ना करें, ये तो ऐसा उनको था। तो मैं बात करने की कोशिश करें, कोई बात ना करे, वो चाहता था भाई मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दूं, बाबा कहते ना उसको लगाओ जहां कोई नरम जगह हो, तो ये तो सब टेढ़े आदमी है तो हम इनको कैसे ज्ञान सुनाएंगे। तो एक दफा मेरे पास आया, वो माचिस लेनी थी और उन्हें अगरबत्ती जलानी थी, योग करते होंगे, तो देखा मेरे पास एक गीता की किताब पड़ी छोटी होती ना, गोरखपुर की बहुत पुरानी, मुझे मिली थी इनाम में, मैं मैट्रिक में फर्स्ट आया था अपने डिस्ट्रिक्ट में। उसने देखी, कहता ये जरूर धार्मिक आदमी, हमने पढ़ी कभी नहीं थी, वो मुश्किल थी, पढ़ते कहां थे, वो छोटी सी किताब होती थी, लेकिन उसने कहा ये धार्मिक आदमी बहुत है, इसको ज्ञान देना चाहिए। तब शुरू हो गया हमारे पास वो, रोज कहे आप आत्मा है, उसी बात पर हम कहे हम तो आत्मा नहीं है, आप बताओ पर मुझे प्रूव करके दो कि मैं आत्मा हूं। रियली बहुत दिन तक वो करते रहे, हम रोज सिनेमा देखने जाए, पटियाला से अम्बाला जाते थे, पहली पहली पिक्चर आई वहां पर जाके सिनेमा देखते थे, पहले हमको देखनी है, सब लड़के इकट्ठे जाते थे, जाके देखते थे। तो उसने एक दफा मेरे से हाथ, है तो गलत बात ना, इतना खर्चा करो, वेस्ट करो, मनी दाय करो, उसने एक दफा मेरे से हाथ मिलाया कि अब पिक्चर मत देखना, तो मैंने हाथ मिला दिया, तो बहुत समय तक पिक्चर देखी नहीं, फिर भी डिस्कशन भाई चलती रही आत्मा पर। तो एक दिन वो मुझे कहते हैं, भाई मैं अंदर मानता तो हम आत्मा तो है, हिंदू लोग तो मानते हैं और ये बात तो राइट थी, उसने कहा आप आज मान जाओ कि आप आत्मा है। जब मैंने कहा ठीक है आज मैं ये मानता हूं कि मैं आत्मा हूं, भाई इतना शुद्ध आत्मा भी नहीं, आत्मा। और वो उन दिनों में आत्मा अंगोष्ठ सदृश होती थी, बाबा अभी जो बाबा ने ज्ञान दिया था कोई ज्योति बिंदु की बात भी नहीं थी। मैंने कहा मैं आत्मा हूं कहते ही आप मानेंगे मुझे उसी वक्त अनुभूति होनी शुरू होगी, ऐसा लगा कि मैं इस शरीर से न्यारा, अपने आप ही न्यारा हो गया। बाबा भी मदद कर रहे थे कुछ, हम चले फिरे, उसको भी आत्मा देखे, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, आत्मा आत्मा, वो अभ्यास करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, आई एम सोल नॉट बॉडी, बहुत लिखा अलमीरा पर, जहां जगह मिलती थी लिखते थे मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं। ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस था वो हमें उसका अभ्यास करके हमारा छूटता चला गया। बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, लाइट फील कर रहे थे। मैं हमारी सर्विंग होती थी, हम पैदल चलते थे, किससे बात नहीं, इसी धुन में मैं आत्मा हूं, शोध आत्मा में ही आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, ज्योति स्वरूप हूं, ऐसा बस। तो बहुत मजा आया, बहुत चेंज आया, साइलेंस में चले गए, सब खान पान बातचीत लोगों से बदल गई, यानी ऐसा लगा कोई लाइट दिखाई दी है। जैसे ना गौतम बुद्ध को वो बैठे थे वहां बनारस में, वो कहां सारनाथ में, तो बार के नीचे वो लाइट दिखाई दी। तो लाइट माने ये लाइटनेस हो, जैसे कहना चाहिए बुद्धि खुल गई है, बिल्कुल मन बड़ा खुश हो गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सुनाओ जी अभी आपके पास और कौन सा ज्ञान है, सब बताइए आप तो मुझे। उनने फिर शुरू कर दिया आत्मा परमात्मा ये सब बातें और चिट्टे चक्कर। विद इन एक दो दिन के अंदर सारा मुझे समझ आ गया, कोई भी प्रश्न हमारा नहीं उठा, कोई प्रश्न नहीं, हर बात इतनी अच्छी लगे। आत्मा क्या है, परमात्मा शिव है, उन दोनों में शिवलिंग कहते थे, ये ज्योति बिंदु नहीं था, और उसकी यादगार तो बहुत बड़ी थी। हमारे मंदिर थे दुख भजनेश्वर, ये हमारे कुरुक्षेत्र में बहुत मंदिर थे, सबका उन्होंने जो अर्थ बताया, शिव का कल्याणकारी है, जो दुख हटने वाला है, अमरनाथ है, ऐसी बातें लगी बुद्धि में बैठ गई, इसके अलावा तो परमात्मा हो नहीं सकता। फिर बताया कि राम कौन है, रावण कौन है, ये सब बातें जो थी ना, और ये शिव शंकर मंत्र है, और अच्छा लगा। जो बातें हम अभी सुनाते हैं लोगों को, उसने सुनाई, इतनी वंडरफुल लगी, इतनी नई लगी, इतनी मन को प्रसन्न करने वाली लगी, बुद्धि को संतुष्ट करने वाली लगी, बहुत अच्छा लगा, कोई प्रश्न नहीं। और फिर सुनाया सृष्टि चक्र 5000 वर्ष क्या है, और हूबहू रिपीट होता है। सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा, मैंने कहा आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत हुई थी, फिर सामने खड़ी है, उस वक्त आई है। फिर मैंने कहा वो गीता में कहा कि हे अर्जुन हम पहले भी थे, अब भी हम फिर भी मिलते रहेंगे, साइक्लिक हो गया, हिस्ट्री साइक्लिक। तो ये सब बातें सुनकर के बहुत सुंदर मजा आ गया, बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा भाई तो बहुत अच्छा है, योग भी सीख लिया, यानी ऐसा लगा बाबा ने जैसे बुद्धि को पकड़ लिया, सब बातें सॉल्व कर दी, और कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं। मुरली सुने ऐसा लगे जैसे मैंने तो पहले भी सुनी हुई, ऐसा फीलिंग आती थी। तो फिर मैंने कहा भाई बताओ ये आपको ज्ञान मिला कहां से है। उस वक्त अभी त्रिमूर्ति छपा नहीं था, जहाज भी नहीं छपा था, बाद में जापान से छप गए थे, हाथ से बने होंगे जब बाबा के पास होंगे, हमने देखा नहीं था। उसने कहा ये ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, जगदम्बा सरस्वती है, ये है। उन दिनों में मैं गीत गाया करता था, हम आरएसएस में जाते थे, एक गीत गाते थे, तो मैंने उनको सुनाया, उसने नया अर्थ बताया। मैं हम गीत में सुनाता हूँ क्या गाते थे, उस पर अपने भारत माता पर, भारत माँ तेरी जय हो विजय हो, तू शुद्ध तू बुद्ध तू प्रेम आकार, तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। एक ये प्रार्थना या कुछ हम गाते थे आरएसएस में। तो जब मैंने उनको सुना, उसने नया अर्थ बताया कि ये भारत माता को ये धरती नहीं है, इस धरती की भी वैल्यू तब हुई है, इसलिए इसको माता कहा गया है, क्योंकि यहां पर शिव बाबा ने माताओं द्वारा ये सारा कार्य कराया है। ये गंगा को माता कहते हैं, यमुना को माता कहते हैं, सब नदियों पर माता का नाम है, कई बातों का जो है वो माताओं पर नाम है। इसलिए क्यों है ये, क्योंकि जब शिव बाबा आया, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आया, पहले माताओं को ही, माताओं द्वारा ही कार्य कराया, माताओं को निमित्त बनाया, उसी की यादगार ये भारत माता भी है, और साथ साथ नदियों का नाम भी है, सारी ये ज्ञान गंगा या कुछ को ये सारा कुछ है। मैं तो ये नई बात सुनी, समझ गया। तो तब मैंने फिर गीत और उल्टा और तरीके से बनाया कि अब तो भारत माता शक्ति अवतार आ चुका है, भारत माता माँ तेरी जय है विजय है, हो गई, तू शुद्ध तू बोध तू प्रेम आगार, तेरा विजय सूर्य माता उदय है, हो नहीं उदय है। तो वो ऐसे से हम सुने, तो उसने कहा कि जो ये जो निमित्त है, मम्मा बाबा जो है वो राजौरी गार्डन दिल्ली में आए हुए हैं। अब यदि तुम चाहो भी सात चार पांच सात दिन हुए होंगे सारे, आप जाओ तो जाके मिल सकते हैं। मैंने कहा अगर मिलना चाहिए, ये सोर्स ऑफ जो नॉलेज है, जो इसका ज्ञान जिसमें शिव बाबा आते हैं, उनको तो एक दिन भी लगाना नहीं चाहिए। जब बाबा कहते हैं जिसको निश्चय हुआ और भागे मिलने के लिए, हम भी भाग पड़े। तो हम पहली दफा हम गए दिल्ली में, गए तो रात्रि को 11 बजे पहुंचे, क्योंकि हमें वो पूरा पता नहीं था, अभी नया नया हम पहले फर्स्ट टाइम दिल्ली में जा रहे थे। तो वहां एंटर होते ही ऐसा वातावरण था, एक भाई ने थोड़ा योग कराया, जैसे उड़ा दिया, जैसे वहां का वातावरण बड़ा सरचार्ज था, बड़ा पावरफुल था उस, क्योंकि बाबा मम्मा भी वहीं आसपास कहीं रहे हुए थे, वहीं पर ही, तो अच्छा रहा। पर सुबह हम बाबा मम्मा से मिलने गए, तो आप बताइए कौन है बाबा मम्मा? जो है आदि देव। सारे धर्मों में तीन हस्तियों की, तीन सत्ताओं की मान्यता अब भी कायम है। एक एक तो परमात्मा जिसे अल्लाह कहते हैं, गार कहते हैं, शमशिव बाबा कहते हैं, एक तो उसकी। दूसरा एडम एंड ईव, आदम और बीबी, और ब्रह्मा और सरस्वती। अभी भी बहुत धर्मों में इसकी यादगार, इसकी मान्यता है। तो बताओ ऐसे जो एडम और ईव, आदम और बीबी, हाईएस्ट अथॉरिटी इन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में, बाकी उनकी उस ऊपर अथॉरिटी तो शिव बाबा है, लेकिन वो ऐसी आत्माएं, उनको देख करके कैसे होंगे वो? उनको देखते ही पर्सनैलिटी देखी, एकदम प्योरिटी की पर्सनैलिटी, एकदम चमकते हुए चेहरे, ललाट। मम्मा को देखा, बाबा को देखा, देखते ही रह गए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्यों? मैंने कहा है कौन ये? हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो वो तो ऐसे होने चाहिए ना। उनसे जब मिलने, हमें किसी ने नहीं कहा था मिलना कैसे है, वैसे नहीं कि कोई वहां कोई देखा फूल नहीं, कोई गुलदस्ता नहीं, कुछ नहीं, ये हमें इस बात से अट्रैक्शन दिया, अट्रैक्शन हुआ हमें इस बात से। तो हम सामने बैठे, तो पहले बाबा की गोद में गए, गोद में जाते थे, जैसे नहीं आप जैसे फादर होता है गले लगाता है, तो ऐसे गोद में गए। फिर बड़े आंसू आए, ये आंसू क्यों आ रहे हैं मालूम नहीं, क्योंकि बहुत समय के बाद मिले थे। बाबा ने कहा बहुत बिछड़ी हुई आत्मा मिली है, नजदीक की आत्मा है। फिर बाबा ने हमें थपथपा करके मम्मा की तरफ भेज दिया, मम्मा से मिले गोद में। आप बताइए, देखो कितना उनका बाबा मम्मा का, मैं वो कह रहा था कि कितने देही अभिमानी थे, कितना बॉडी से परे थे वो, इस बात से लगता है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी था, सब बाबा मम्मा की गोद में जाते थे। ये देख लीजिए, इससे मतलब क्या है, देवर आल बॉडी, इस शरीर से परे थे। इस बात को देखा, निश्चय हुआ भाई हाँ। तो हम बाबा से मिले, जब विदाई लेने ले गए, तो बाबा ने एक वरदान दिया। सुना है कौन सा वरदान? आप सुन के आश्चर्य कहेंगे। मुझे पता था कि मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूं और बहुत बड़ी मुश्किल, चाबी फर्स्ट ईयर है, 4 साल और पढ़ना है। बाबा ने स्पष्ट कहा, बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, सुन लो, ये काम नहीं आएगी। हम मतलब भी विनाश सामने खड़ा, तब भी ऐसे लगता था, क्योंकि उस स्वेज कनाल का झगड़ा था, ये झगड़ा था, और 1857 में युद्ध हुआ था, बहुत झगड़ा हुआ था भारत में। अब 1957 था, हमें 100 साल पूरे हुए हैं, लोग कह रहे थे अब फिर कुछ होगा। इस प्रकार से विनाश के बादल तब भी थे। हमने कहा ठीक है, भगवान कौन कौन कह रहा है, भगवान का वरदान है कि बच्चे ये पढ़ाई काम आने वाली नहीं। तो हमने कहा ठीक, हम तो फिर क्या करेंगे पढ़ाई करके। और हमारा क्या था, शुरू से हम इंडिपेंडेंट थे, लोग एक माता पिता भले हमें पढ़ाने वाले वो भी था, लेकिन इंडिपेंडेंट अपने विचारों के थे, और कोई बंधन नहीं था, बाह्य बंधन कोई नहीं था। तो हम वापस मधुबन से गए, अपने दिल्ली से एक लेटर लिखा बाबा को, इंग्लिश में लेटर लिखा, फर्स्ट माई फर्स्ट लेटर टू बाबा इन इंग्लिश। उन दोनों में कंप्यूटर नहीं थे, बड़ा सजा करके बना करके बड़े बॉर्डर लगाकर लिखा, उनमें थोड़े से शब्द लिखे कि बाबा, मोस्ट बेवर्ड बाबा, आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बट आई वॉन्ट टू बी ए कॉर्नर स्टोन, वन ऑफ द स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस विच यू आर इरेक्टिंग। आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन रोड्स एंड हाईवेज, बट आई वॉन्ट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड देन गोइंग टू सुखधाम। एंड आई सेड आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन मशीनरी, बट आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी विच यू हैव इन्वेंटेड। ये बाबा को लिखा, तो बाबा ने पढ़ करके फौरन 2 दिन में जवाब आया, बच्चे चाइल्ड, और इंग्लिश में जवाब बाबा ने लिखा, बाबा ने भी इंग्लिश में लिखा, चाइल्ड बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर पेरेंट्स एंड योर को इंजीनियर्स। याद है बाबा लिखा, को इंजीनियर्स को दो। तो बाबा ने डायरेक्शन दे दी। भले हमने और कोई बातें ना मान नहीं प्रैक्टिस कर सके, बाबा कहता निरंतर 8 घंटे याद करो, ये करो, वो हम नहीं कर सके, लेकिन बाबा जो स्थूल हमें डायरेक्शन देते थे हम उसको पूरा पालन करने की कोशिश करते थे। तो बाबा ने ये ऑर्डर दिया कि ऐसा करो, खूब सेवा करनी शुरू कर दी अपने इंजीनियर्स को। उन दिनों में त्रिमूर्ति निकलती थी मैगजीन, बड़ी मोटी मोटी त्रिमूर्ति थी, अब वो नई प्रकार की होती थी, आजकल की ज्ञान अमृत नहीं होती थी। उसमें क्या, एक पेज खोलो तो क्या निकलेगा, परमात्मा सर्वव्यापिनी, दूसरा खोलो 84 लाख यूनानी, तीसरा खोलो पतित पावनी गंगानी, यानी इस प्रकार की चीजें थी जो कि पढ़ के इंसान हक्का बक्का रह गया, ये ज्ञान क्या है। सब बात जो है वो पतित पावनी गंगानी, सब बातें जो दुनिया वालों से मतदात थी। हम क्या करते 10-20 लेकर के हम जिस हम जाते थे अम्बाला में पिक्चर देखने के, हमारे स्टूडेंट भी आते थे, उसमें सबको हम बांट देते थे। हम कहते पढ़ो भाई, फिर जब उतरते थे सब उनसे वापस लेते थे, वो जब बस ठहरती थी तो उनको कहते थे तो क्या पढ़ा, वो कहते ये क्या आपका ज्ञान है, इसमें तो बड़ी उल्टी सुलटी बात है, मैं बताओ क्या, एक बात तो बताओ। इतना जोश था हमारे में, वो कहता सर्वव्यापी कैसे, दुनिया सब सर्वव्यापी कहती है, आप कहते सर्वव्यापी नहीं, मैं बताओ आर्गूमेंट दो। मैं कहा एक आदमी दूसरे, जैसे हम देते हैं आदमी मार रहा है, ये कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई गरीब है, कोई छुरा मार रहा है, ये कर रहा है, ये परमात्मा परमात्मा कर रहा है, शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, कहते बात तो राइट है आप, वो मान जाते थे। ऐसे करते करते हमारे कितने स्टूडेंट्स हमारे ज्ञान में आ गए, तो हमने अपने जो हॉस्टल था वहां पर ही क्लास शुरू कर दी। वहां पर एक हॉस्टल था, हमने लाल बत्ती लगा दी और ग्रामोफोन बजाते ना, वो उन दोनों में टेप होते नहीं, ग्रामोफोन थे, सुई लगाई और गीत बज जाते थे, और गीत भी कौन से होते थे, जो पुराने फिल्मी गीत, वो ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें हम चोर के आए ये भी गीत था। उन दिनों में बहुत बंधन, बहुत लोगों को, माताओं को बहुत बंधन थे, बहुत झगड़े होते थे, तो ये गीत या तू प्यार का सागर हम तेरी बूंद के प्यासे, हम ऐसे से बजाते थे और सब 2-4-5 स्टूडेंट बैठ के योग करते थे। तुम्हारा वार्डन कहे तुम्हारा ये क्या हो गया, या तुम गीत बजाते हो और ये सारी तुम क्या, ये कोई क्या तुमने खोल दिया ये। हमने कहा हम तो जाते हैं, होस्टल छोड़ दिया फिर हमने, हमें तो जोश था ना बहुत। बाबा ने कहा क्या करना है, सेवा करनी है, तो हमने एक मकान लिया वहां पर, अपना सोफा लिया, ये लिया। अब हमने कहा अपने गीता पाठशाला खोलो, तो हमने कहा फिर मम्मा के पास फिर गए, मैं मम्मा आप हमारे पास वो सब स्टूडेंट्स भी हैं, ये भी है। मम्मा कहती तुम तो वो कुबार हो, स्टूडेंट हो, ऐसे हम बहन तुम्हें कैसे देंगे। हमारे ओम प्रकाश भी साथ थे हम थे, तो उन्होंने कहा कोई युगल निकले तभी हम कोई बहन भेजेंगे, तभी तो है। फिर हमने कोशिश की युगल निकले, भाई युगल भी निकले, अब सेंटर को, इस प्रकार से सेवाएं चालू होगी। इस तरह करते करते जो था, उसके बाद पटियाला से नाभा, चंडीगढ़, कई प्रकार की, उस वक्त यानी सेवा केंद्र खोलने का शौक था। बाबा को बहुत अच्छा लगता था इन बच्चों ने सेवा केंद्र खोला, उस बहुत कम सेवा केंद्र थे, कितने होंगे, मैं उस वक्त 20 भी मुश्किल होंगे, 30 होंगे, आप याद नहीं, मुझे बहुत कम थे। और पाप हमारी ब्राह्मणों की पॉपुलेशन बहुत कम थी, हम ही थे जो छोटे मोटे जैसे वही थे। तो उसमें क्या किया, फिर इस प्रकार से एक ये तो हमारी सफलता मिली। फिर बाबा ने कहा था तुम वो जाओ अपने लौकिक परिवार की भी सेवा करो, हम चले गए। जब समर वेकेशन था हम गए, तो अपने पहले माता जी को ज्ञान दिया, वो खुश हुए, हाँ बात तो राइट है। फिर लौकिक पिता जी को ज्ञान दिया, उसने बहुत भक्ति की थी, बहुत भक्ति, श्री कृष्ण की तो भक्ति इतनी करते थे, अपने वो भागवत पुराण तो रखते थे, रोज सोते सोते वो पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, केवल गुरमुखी और उर्दू जानते थे। उनको मैंने ज्ञान दिया तो महात्मा हो बाबा के बच्चों, लिख की दी कमेंट्री। वो चलते चलते खेतों में जाएंगे, तभी वो अंदर अंदर बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, तो कहता बात तो अच्छी है, उनको शांति भी प्राप्त होती थी। लेकिन मैं तब मानूं अगर आपका बाबा मुझे कुछ दिखा दे, साक्षात्कार करा दे, उन्हें दिखाना होता था भाई मुझे कुछ चीज दिखा दे। वो मैंने कहा अभी तक हमें तो मिला नहीं, देखा नहीं हमने, और मैं आपको कैसे दिखाऊंगा, और आप अभी तो सेंटर में भी नहीं गए, ना किसी दादे से बाबा से मिले, ना किसी से मिले, तो कैसे जाएंगे आप। फिर हम क्या करते थे गुरुवार को, और वहां पर जब थे जैसे भोग लगता है गुरुवार को, भोग लगाते थे, तो एक दिन वो सब बैठे थे और गांव के लोग भी थे, उठ के खड़ा हो गया हमारे लौकिक पिताजी, बहुत बड़ी सर्विस हुई। खड़ा होकर वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके वो चीज हाथ आती नहीं। फिर वो नीचे उतरते हैं बड़े उदास, कहता आज तो बहुत बुरा हुआ। मैं क्या हुआ जी, के कहते मैं ऊपर कहीं गया तो बहुत सुंदर छोटा सा श्री कृष्ण बच्चा मेरे सामने आया, क्योंकि भक्ति तो बहुत की थी और बाबा भक्त वत्सलम है, भक्तों की बात तो वो पूरा करता है। मैं उसको पकड़ता था वो यहां चला जाए, यहां पकड़ू यहां चला जाए, यहां मेरे हाथ में नहीं आया वो। तो मैंने कहा फिर कि फिर आपका बाबा, अभी उन्हें अपना बाबा नहीं मेरा बाबा, जो आपका बाबा आया उसने कहा कि बच्चे जब तुम धारणा करोगे और निश्चय बुद्धि बनोगे तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, वो तो इतनी उम्र तो काफी थी, फिर भी मिडिल एज थे, उन्हें धारणा वारणा शुरू कर दिया और उसके बाद वो जैसे कई खान पान भी ठीक किया, सब कुछ किया, फिर अब अगले गुरुवार फिर हम बैठे, फिर वो ध्यान में चले। हम बताया आपको वंडरफुल बात थी मेरे लिए तो बहुत एक वो। हम पहले क्या करते ध्यान, हमारी ध्यानी दादी आती थी हमारे अंबाला से पटियाला में, और वहां पर वो आकर के हर गुरुवार भोग लगाते थे, इतवार को आते थे, वो यूं हाथ करेंगे, फूल देंगे, ये देंगे, मैं सब देखता था, कभी हमें भी फूल देते थे भी नया नया। तो हम कहते थे ठीक है, बाबा तो कहते हैं ध्यान कोई वो ज्यादा वैल्यू नहीं है, हम कहते हमें तो समझ अभी इतना आता नहीं, लेकिन ठीक है बाबा कहते भगवानों वाच, बाप माना है तो जो कुछ वो कहे बिल्कुल ठीक। बताया आपको जब एक बार बाप कह दिया मेरा बाप है, वो जो कुछ दिखाया, जो कुछ बताया, जो कुछ सुनाया, उसमें कोई संशय लाने की दरकार नहीं है। आपको समझ आया चाहे ना आए, लेकिन संशय नहीं लाना, निश्चय बुद्धि। तो हम ठीक थे, हमने कहा होगा, बाबा तो कहता ध्यान में कोई वो नहीं है, तुम तो ज्ञानी तो आत्मा बनो। जब वो देखा दूसरे दिन अगले गुरुवार उठ के खड़े हो गए, तो फिर उनको श्री कृष्ण देखा और उनकी गोद में आया, बड़े उनके आंसू आए, बहुत खुशी महसूस हुई। उसके बाद जो है जितने भी लोग देख रहे थे हमारे फैमिली मेंबर ये वो सभी लोग ज्ञान में आ गए, बस कमाल आई तो बात। और इतने वो बड़े संदेशी बन गए, हम बताएं हम जो उनसे पूछे बाबा से पूछ के आओ वो पूछ के आते, एक्यूरेट। हम बताएं आपको गांव में रहने वाले इतने पढ़े लिखे नहीं, जो बाबा से कहीं पूछ के आओ भैया आप ये कैसे आए, लौकिक बात भी पूछ के आते थे, वो बाबा उनको बता देता था। बड़ा क्योंकि उन्होंने भक्ति बड़ी की थी, बाबा के बड़े प्यारे बन गए वो, तो बड़ा बहुत आनंद आ गया। तो सारे हमारे माता जी पिताजी और दूसरे भाई भी उनको भी बड़ा प्रभाव पड़ा, सारे ज्ञान में चल पड़े। तो अब इस वक्त जब हम ज्ञान में चले तो हम अकेले थे, फिर माता जी आए, पिताजी आए, तीन भाई आए, एक बहन आए, सारे चाचा मामा का वहां सब ज्ञान में आ गए। उसमें से बहुत लोग तो चले गए और काफी लोग अभी समर्पण जीवन बिताते हैं। हमारी सिस्टर है वहां अमृतसर में है, हमारी लौकिक माता 108 साल की है, वो हमारे पास नीचे शांतिवन में रहती है, अभी भी वो गीत सुनाती है देख लो। और हमारे भाई वो सब इस ज्ञान में चल रहे हैं। तो इस तरह से सब परिवार चल पड़ा, बहुत खुशी हुई। उसके बाद हम सेवा करते रहे, चलते रहे, कई जगह सेवा केंद्र खोले, ये कि सेवा में बहुत लगे वो, यानी मधुबन में उस वक्त के मधुबन में बार बार नहीं आते थे, साल में दो दफा आ जाएंगे, एक दफा आए, गर्मियों के मौसम में आते थे, बाबा से मिलते थे, या बाबा कई दफा आते थे, मम्मा कई दफा आती थी। तो मैं जब फर्स्ट टाइम बाबा से दिल्ली में मिला था, उस वक्त क्या क्लास के बाद बाबा मम्मा हम सब लोग जाते थे सैर करने के लिए, एक दो दिन रहे थे। तो मुझे एक प्रश्न आया जो मैं मम्मा से डायरेक्ट पूछा, मैंने कहा मम्मा ये सब चाय पिलाई जा रही है, खाना खिलाया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है, ब्रह्मा भोजन हो रहा है, ये पैसे कहां से आते हैं, ये कहां से आ रहा है ये सब चीज, कोई आपकी भंडारी नहीं। उस वक्त ध्यान आया, कोई किससे मांगता नहीं, कोई किसी को देता नहीं, देखा भी को देते हुए। तो पता बाबा मम्मा ने क्या कहा, कितनी रॉयल्टी, मम्मा ने ऊपर इशारा किया, ऊपर से आता यानी ऊपर से, राइट बात है। मैंने कहा उस वक्त मैं समझा आता होगा ऊपर से, रियली उस हम तो सभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, हमें क्या पता क्या है क्या नहीं, पर जैसे हमारी ध्यानी दादी फूल देती है फल देती है तो क्या पता ऊपर से आता भी हो, ये सोचा हमने। अब ये रियल बात है, कैसे हम आप हम सब मिलकर यज्ञ में करते कैसे करते हैं, आप बाबा का ज्ञान सुना देने वाला कौन है, शिव बाबा, तभी तो आप निश्चय बुद्धि हुए तब आप ज्ञान में देने वाला कौन है वही। अच्छा हम योग लगाते हैं बाबा से प्रेरणा आती शक्ति मिलती है वो कौन है, सुख शांति मिलती है देने वाला कौन है, शिव बाबा, तो आप किसके निमित्त करते हैं, उसके निमित्त ऊपर से आता है, कहां से आता है। तो इस प्रकार से हम पहली पहली मम्मा से बात की, मम्मा ने ये कहा। तो मैं देखो मैंने कहा कितनी रॉयल्टी, कितनी वो बात थी, कोई किसी को कहता नहीं था। फर्स्ट टाइम हमारे यज्ञ में वो एक म्यूजियम बना था वहां पर दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन में, तुम्हारे एक इंदर जी थे उन्होंने सबसे पर्ची भरवाई थी, सब लिख के दो कितना कितना दोगे, तो बाबा को अच्छा नहीं लगा था, पर बाबा ने लिखा बच्चे मेरी पर्ची भी डाल दो, तो बाबा ने भी अपनी पर्ची लिख के ऐसे मरासी में भेज दी थी। तो कहने का मतलब है कि कितनी रॉयल्टी कितना कुछ था उस पर उस समय। अब तो बहुत संगठन बढ़ गया, बहुत सेवाएं हो रही है, तब तो कुछ ना कुछ कहना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है, बात अलग। उस वक्त जो थी स्वतः प्रधान जो थी यज्ञ की अवस्था वो थी। तो हम चलते रहे करते रहे, हम पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट था ही नहीं, डिसइंटरेस्टेड थे। कभी हम जाएंगे, कभी मम्मा आ रहा है, कभी बाबा आ रहा है, कभी प्रदर्शनी है, कभी कुछ है, हफ्ते के बाद जाते थे क्लास में। और इंजीनियरिंग की स्टडी ऐसी, अगर एक भी लेक्चर मिस करेंगे अला समझ नहीं आएगा, हमें कुछ समझ नहीं आता था। तो हम जब कहेंगे, वो प्रोफेसर बोलेगा हाजिरी एपी मेहता, मैं कहता था यस सर, तो सारे लोग हफ्ते थे कि देखो ये प्रिंस है, हफ्ते के बाद आ रहा है, ये क्या पढ़ाई करेगा। तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, सच कहते हैं डिसइंटरेस्टेड भाव का ना बैराग। हम जाते रहे पढ़ते रहे, फीस भरते रहे करते रहे, लेकिन पता नहीं चार साल कैसे बीते और हम पास भी हो गए। आश्चर्य लगा कि हम पास हो गए। आप मानेंगे आई वॉज द टॉप स्टूडेंट इन द उसमें आए थे जब, लेकिन हम पता पास कैसे हुए, आई वॉज द लास्ट स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी टू पास। हमें इंटरेस्ट था नहीं, और हमें बाबा ने कहा तुम्हें जॉब तो करना नहीं है, नौकरी करनी नहीं, तो क्या पढ़ाई, फिर भी पास हो गए। हमने डिग्री लेने भी नहीं गए, हम बताएं आपको, होता है ना वो पहन करके डिग्री लेते हैं, हम कभी गए नहीं, क्यों नहीं लेने गए बताएं आपको। मैंने कहा देखो डिग्री, एक मुझे स्टोरी याद थी भागवत या किसी दृष्टांत था, एक था वो बड़ा सेठ था, तो वो यात्रा पर निकला, जब अंधेरा हुआ तो दो चार पांच और भी साथ चल पड़े, तो वो उस वक्त धन माल था बहुत, जब रात्रि हुई तो उसको पकड़ के मारपीट करके उसको कुएं में डाल दिया, और खुद जैसे उसका सारा माल ले लिया। अब वो बेचारा जब गिर रहा था धीरे धीरे कर, एक वो होती ना बेल लटकी होती है कुएं, पुराने कुएं होते ना एक कोई बेल होती है लटकी हुई वृक्ष की पेड़ कुछ को, उसको पकड़ लिया उसने, और लटका रहा वो बेचारा, वो लटका रहा, और अब क्या करे, अब सुबह दिन निकला, अब ऊपर चढ़े कैसे निकले। तो उसने क्या देखा, नीचे देखा कुएं में तो बड़ा अजगर बैठा हुआ है पांच मुंह वाला, और ऊपर देखा तो चूहा जो है ना उसकी जड़ को काट रहा है उस बेल को, तो अगर वो नहीं जल्दी चलता तो कट जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो वो अजगर बैठा है, तो क्या कर, क्या किया उसने, फटाफट जल्दी करके ऊपर चढ़ गया और बच गया वो। तो हम भी ऐसे कहते हैं वी शुड नॉट हैव एनी ग्राउंड टू स्टैंड अपॉन, हमें एक बल एक भरोसा चाहिए, हमें धरती पर पौने टिकाने है, अजगर है ये। हम सोचते थे अगर मैंने वो ले ली डिग्री ले ली, कभी कोई परीक्षा आई, यज्ञ में परीक्षा तो आती है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ डांट दिया, कुछ काट दिया, कोई परीक्षा आएगी, चलो हम तो नौकरी कर लेते हैं, जॉब तो मिलता ही मिलता है। उसने इंजीनियर की बहुत दरकार थी, मैं कह लेनी नहीं डिग्री हम। वी शुड नॉट हैव एनी ग्राउंड टू स्टैंड अपॉन, एक बल एक भरोसा, ऊपर लटके रहे तो ऊपर चढ़ेंगे, अगर धरती पर पांव रखेंगे तो क्या होगा, तो धरती पर पांव नहीं, धरती का कॉन्शियस हो जाएंगे, बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे। तो हमने तो ये नहीं कहते, उस हरे का अपना अपना पार्ट है, सबका कुछ है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है। उस समय की बात जो बाबा ने कहा था बच्चे तुम्हें नहीं है, तो उस बात को पूरा करने के लिए हम डिग्री लेने नहीं गए। हाँ, अभी पासपोर्ट बनाना था तो हमने वहां डेट ऑफ बर्थ करके लिए डिग्री वो मिले, सर्टिफिकेट मिले, अदरवाइज पहले नहीं ली। इस प्रकार से चलते रहे, इंजीनियरिंग पास कर ली, फिर बाबा मामा के पास हम अपने लौकिक माता पिता को लेकर के आए। एक बात में पहले, जब बीच बीच में मधुबन आते थे, हमने एक यही मधुबन था, ये हाल नहीं था उस वक्त, क्या हालत थी मधुबन की, केवल बीच वाला जो है ना ये टीन का जो बना हुआ है, जब बाबा कमरा है, ये है ऑफिस है, ये यही हुआ करता था, और कोई मकान यहाँ पर नहीं था, ना ये मकान था, ना हिस्ट्री हॉल था, ना वो ट्रेनिंग सेंटर था, वो तो था ही नहीं, जब बीच वाला वो टेनिस कोर्ट, वहां टेनिस कोर्ट था घास का। हम जब आए, अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर, सेकंड ईयर था, ब्लेजर पहना हुआ था, कैमरा हमारे पास था, तब बाबा को देखा, एक बड़ा अद्भुत नजारा देखा। क्या देखा, उस 80 साल के बाबा थे, 80 ईयर्स, बाबा अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, क्या चीज, क्रिकेट, एट द एज ऑफ 80। दादा विश्वरतन उनको बाल फेंकते थे और बाबा खेलते थे, मैं देख के बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि इतनी एज में और इतने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा खेल रहा है सब बच्चों के साथ। मैंने फोटो लेने की कोशिश की, बाबा ने कहा नो, बच्चे फोटो क्या करेंगे, मना कर दिया, मैं चुप हो गया। फिर बाबा के महावाक्य थे जो हम लोगों को बड़े फायदेमंद हैं, बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं, कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है? शिव बाबा देखो मेरा तो फोटो आगे नहीं, और ये तन कैसा है? उन्होंने शब्द बोले, मैं वो बोलता नहीं हूं, तन तो किसी काम का नहीं, बताओ। यानी बाबा हमेशा जब हर एक्शन में हर बात में सोल कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस की ही शिक्षा देते थे, कभी इन बातों में उपराम रखते थे। तो मैंने कहा बात तो राइट है, फिर कहा चलो बच्चे फोटो खींचना तो खींच लो, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं है। हमने खींचा, इस प्रकार से चलते चलते किस प्रकार हम जब इंजीनियरिंग पास कर ली, लोग माता पिता के पास फिर आए, लेकर उनको साथ आए, तो बाबा ने कहा मैंने तो कहा था बच्चे जॉब तो तुम्हें कोई नौकरी करने की दरकार नहीं, उस वक्त हैंड्स चाहिए थे। वास्तव में देखो बाबा की कितनी जबरदस्त प्लानिंग है, बहुत वंडरफुल प्लानिंग है, हम समझते नहीं। देखो जब दादियां आई, क्या एज थी उनकी, 8 साल 9 साल 10 साल, मैक्सिमम 16-17 साल की थी, मम्मा के साथ 16 साल थी। आप बताइए, लोग कहते हैं ज्ञान तो बुजुर्गों के लिए होता है, बड़ों के लिए होता है, ये सब बच्चे बच्चों को ज्ञान क्यों सुनाया जा रहा है? हम भी जब आए 20 साल, हमारे वो जो बिरादरी के कहते थे, ये 20 साल में ज्ञान की क्या दरकार है? देखो बाबा की प्लानिंग देखो, अगर हम सोचते हैं अगर उस वक्त बाबा 50 साल वालों को ज्ञान देता केवल, तो आज क्या हालत होती? कोई होते बचे हुए? कोई नहीं होता, जो 50 साल वाले चले गए। और उनने बाबा ने बच्चों को पकड़ा, उनको ट्रेनिंग दी, कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बाबा की थी। हम भी जब 20 साल के, अगर हम होते 50 साल के, तो हम कहां चले जाते, परम धाम कहां चले जाते, कहीं और जन्म होता, बाबा से मेहनत लेके चले जाते। तो बाबा की देखो कितनी जबरदस्त, शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा को शायद ना मालूम हो, शिव बाबा कितनी जबरदस्त प्लानिंग है कि उसने पहले छोटों को पकड़ा, उनको ट्रेंड किया, और कितनी बड़ी आर्मी बना दी। और उस आर्मी का कौन था सेनापति? हमारी मम्मा थी। ऐसी मम्मा की वो थी चाल ढाल और उनकी जो फिगर लगती थी कि ये सारे शिव शक्ति सेना की ये सेनापति है, दूर से दिखती थी उनकी चलना, उनका बोलना, उनका मुस्कुराना ऐसा होता था। हम बताएं, मम्मा से हम बहुत, बाबा से कम मिलते थे, थोड़ा वो लगता था झाका सा, मम्मा से बार बार मिलते थे, कोई डायरेक्शन हो मम्मा से पूछेंगे, कोई बात हो मम्मा से करें। एक दम मम्मा क्या थी, मुरली के बाद वो टेनिस पर ऊपर दिल्ली में टेनिस पे जाकर के वो विचार सागर मथन करती थी। हम जाते थे कोई बात पूछेंगे, मम्मा को इच्छा नहीं होती थी बोलने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बोलते थे। इस प्रकार से हमने देखा कि मम्मा, एक दफा मम्मा हमारे पास आई पटियाला में, तो जब हम उनको लेने अमृतसर से लेने के लिए गए थे, जब हम सारे भोजन कर रहे थे, होता ना जो ज्यादा बाबा के जो सेवाधारी जो सेवा करने वाले थे भाई थे, सब उनके साथ भोजन कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, तो हम नए नए थे अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। हम खाना खा रहे तो आवाज, थाली और चम्मच की आवाज थोड़ी आ रही थी, तो मम्मा मुस्कुरा दी। मम्मा हर बात में कोई भी बात बतानी हो मुस्कुरा देंगे, तो हम समझ जाएंगे कोई ना कोई बात है, जो हमारी कोई बात है जिससे कि उनको अच्छी नहीं लग रही, हम उसको ठीक कर ले। तो मैंने सोचा मम्मा मुस्कुरा रही है तो जरूर मेरी थाली की आवाज आ रही है, तो बंद कर दे। आवाज की बिल्कुल बात नहीं, चलेंगे ऐसे चल रहे हैं जैसे कि कोई कदम की आवाज भी नहीं। इतनी मम्मा की शालीनता, इतना उनमें संतुष्टता। मैं कहता हूं शिव बाबा ने ब्रह्मा में आया तो सारे अगुण बाबा में आ गए, यानी पुरुषार्थ द्वारा, पुरुषार्थ भी किया तो सर्वगुण संपन्न बन गए। और मम्मा ने भी बाबा से ज्ञान सुन करके, बाबा द्वारा ज्ञान सुन करके भी पूरी सर्वगुण संपन्न थी। हम बता दें आप, हर बात अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता कितनी जबरदस्त। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, कितनी बड़ी बीमारी थी, बहुत बड़ी, आप सब जानते होंगे, 24 जून को छोड़ा, और उसी दिन ही ये अंगूरों की बेलें आप खड़ी हैं, उससे अंगूर निकले। कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले मम्मा ने सभी ब्राह्मण जो वहां पर थे बस से सबको अंगूरों खिलाए और दृष्टि दी और मुस्कुराते हुए, आप बताइए ऐसी उसी दिन में, जैसे ब्रह्मा बाबा देखो 9 बजे करीब अव्यक्त हुए और दो घंटे पहले उनके मुख से इतनी जबरदस्त वाणी निकल रही है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई जुकाम भी हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे तो क्लास मिस कर देंगे, वहां तो इतनी जबरदस्त, इतनी वो सहनशीलता थी। हमारी सभी दादियां सहनशीलता की तो कमाल है, इन दादियों का, बाबा मम्मा का, सभी ने वंडरफुल आत्माएं हैं। हम बताएं 108 जो माला है वास्तव में इनकी, हम बताएं आप कितना त्याग है, तपस्या है, एक एक रोम रोम, एक एक हड्डी हड्डी उन्होंने यज्ञ में लगा दिया है। और इतना निश्चय बुद्धि, बाबा कहे कि अभी रात है तो रात है, ये नहीं कि बाबा है तो दिन आप रात करें, नहीं, बाबा का ये दीवार गिर जाएगी तो हाँ गिरेगी, कभी बाबा मम्मा और दादियों का, कभी भी बाबा मम्मा के प्रति रिंचक बात भी, कोई बात संशय हो, था ही नहीं, बिल्कुल निश्चय और निश्चिंत बुद्धि थे, मम्मा थी निर्भीक एकदम। आप बताइए मम्मा को आपने, मैं क्योंकि कल अनुभव सुना वहां पर, वो सारे वो थी, वो कुमारों की बट्टिया, वो सम्मान हो रहा है कि मम्मा कितनी निर्भीक थी। एट दी एज ऑफ 17-16 कोर्ट में गए, जज ने प्रश्न पूछे, एकदम निर्भीकता से जवाब दिया कि सर भी आप ये मैं कैसे मानूं, जब आप मुझे आप देख रहे हैं, ये देखिए परमात्मा देख तो रहा नहीं, वो कहता ये तो आप वो अवहेलना करके आप उसकी अवमानना कर रहे हैं, आप कोर्ट की डिसरिगार्ड कर रहे हैं। उसने कहा क्या करूं, मुझे दिखता नहीं, मैं क्या करूं। मम्मा से प्रश्न पूछा है कि आप क्या बताइए कि बाबा के गोद में तुम सब बहने जाती है। उसने कहा क्या बात है, तुम्हारी जो बच्ची है तुम्हारे वो नहीं, तुम्हारे से मिलती, गोद में नहीं आती क्या, तुम्हारा बाप है, स्पष्ट बता दिया, ये डरे नहीं कुछ भी, अखबारों में आया, लेकिन अखबारों ने उससे सेवा हुई नहीं। मम्मा इतनी निर्भय थी, निर्भीक थी, बात बात पूछिए, कितनी कितनी बातें आई आप कितनी हमारे संस्था पर, शुरू शुरू में बातें गवर्नमेंट के खिलाफ थी, उसके बाद सारे भाई बंद के खिलाफ थे, मीडिया के खिलाफ था, सब दुनिया के खिलाफ अपोजिशन थी, पूरी अपोजिशन थी। ये कितनी माताएं बहनें इनको बाबा लेकर के धीरे धीरे करते करते कहां पहुंचा दिया है, क्या है तो इनकी कमाल है ना। तो इस प्रकार से चलते चलते हम चलते गए और फिर आगे बढ़ते गए। बाबा ने हमें कहां भेज दिया, भ्राता जगदीश जी के पास भेज दिया कि आप, मैंने कहा था ना वो तुम्हें वो जाप नहीं करना है, तुम्हारे लौकिक फादर भी साथ थे, वो उनको थोड़ा वो लगा भाई ये तो इतना पढ़ाई की वो किया, क्या पता चल सके ना चल सके। तो मम्मा से कहती है, मम्मा हम ऐसे बात करना बड़ा इजी था, मम्मा से कहते हैं अगर ये जाप भी करेगा ना हमें पैसे की दरकार नहीं, आप यज्ञ में रखो लेकिन इसको जाप तो करने दो। मम्मा ने कहा बिल्कुल नहीं बोलना, बाबा जो है भृगु ऋषि है, वो बच्चों के, हम बच्चों के आदि मध्य अंत फ्यूचर को जानता है कि तो क्या काम देना है क्या नहीं देना। बाबा वॉज फिटिंग, हर एक जगह जगह अपने बच्चों को फिट कर रहा था, इसको ये काम देना है, इसको ये काम देना है, ऐसे लगता था। जगदीश भाई भी कहते थे पता नहीं आप इंजीनियर हैं, बाबा ने हम आपको क्यों भेजा है, कोई आगे बहुत काम करना होगा, कुछ करना होगा। मैंने कहा मालूम नहीं, जो बाबा के हम तो वही करेंगे ना। इस प्रकार से हम दिल्ली में रहे 3-4 साल, दिल्ली में जगदीश भाई के साथ रहे, भू सेवा की, हर प्रकार की सेवा की, कोई नहीं हम देह मां हम इंजीनियर हैं नहीं। क्या होता था, तीसरी मंडल पर हमारा सेंटर था कमला नगर, 151 कमला नगर, हमें हम चलते थे जगदीश जी के साथ, हमें वहां से सिर पे सामान कागज लेके नीचे आते थे, वो साइकिल पर रख के प्रेस में जाते थे, उस वक्त तो कुछ था ही नहीं, चप्पल ही मारी बी शेप पहनते थे, आप बताइए, अब तो देखो क्या बाथरूम में पहनते, बहुत वो था उन दिनों में, बिल्कुल बिगिनिंग था। तो एक दफा हमने रखा सामान, थोड़ा पैर फिसल गया, जगदीश भाई ने एक श्लोक पढ़ दिया, क्या इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये देखिए हमें हंसी आ गई, मैं देखो हमारा मेरे लिए क्या, हम तो वो था एंथुजियाज्म था, बड़ा वो था जोश था, कोई बात नहीं थी, हमें कोई भी काम दो, चाहे साइकिल चलाने का था, कुछ भी करो, हम जाते थे सुबह सुबह जाएंगे और जामा मस्जिद में जाके वहां काम कराएंगे, तारों की छांव में जाओ तारों की छांव में आओ, अपना खाना साथ बांध लेते थे चले जाते थे, वहां कुछ एक उर्दू की गीता लिखवानी वहां बैठते थे, फिर वहां खाना भी पार्क में खाते थे, शाम को आ जाते थे, क्योंकि बार बार साइकिल में 10 किलोमीटर आएंगे जाएंगे कैसे, ऐसे करते थे। इस प्रकार से सेवा में लगे रहे, आगे बढ़ते रहे, कोई परीक्षा नहीं, कोई परीक्षा में स्थूल परीक्षा कोई नहीं आई, हेल्थ भी ठीक सब कुछ था, और हमारा क्या था, मैं वो लौकिक जमीन थी वो भी बेच दी, वर्षा मिल गया तो अच्छी बात हुई। तो कहने का मतलब यह है, तो बाबा ने मुझे क्या कहा, बच्चे वर्षा मिला तो बैंक में रख दो। मैंने कहा बाबा आपने अपना वर्षा अपना जो प्रॉपर्टी बैंक में रखी थी हम नहीं रखेंगे। तो क्या हुआ कि उस वक्त क्या एग्जीबिशन की मेंशन हुई थी दिल्ली बॉम्बे में, तो हमारे पास एक स्लाइड बनी थी, वो आई थी सीढ़ी की स्लाइड आई, तो मुझे कुछ काम तो चाहिए था, तो हमने एक वो उस रजौरी गार्डन में रहते थे, हमने एक बहुत अच्छी सीढ़ी का वो स्लाइड थे देख करके एक सीढ़ी का चित्र बनवाया, कि बाबा से कनेक्शन कैसा होता है ज्यादा। अब वो बड़ा प्लास्टिक लगा के रिबन लगा के उसको अच्छी तरह संभाल के भेज दिया बाबा के पास, दादी प्रकाश मणि थी, दादा विश्व किशोर थे, भेजा तो बाबा को मिला, बाबा को बहुत अच्छी लगी, एक फर्स्ट अटेम्प्ट थी, तो उन्होंने लेटर लिखने शुरू कर दिए, बच्चे ये करो, बच्चे ये करो, अथॉरिटी से, बच्चे क्या है गुजारिला नंदा को बिठाओ उसमें कांटों के, है ना, नहीं है, है वो बैठा कांटों पर सुला दो, उस पर पीछे वो 5 प्लान रख दो और भीख मांग रहा हो, तो ये चीज दिखाओ बाबा को, भी कुछ लिख देखे ये करो, कभी वो गंगा वाला लिखो, रोज रोज बाबा के पत्र में जाते थे, मैं तो बड़ा खुश हो गया, बाबा के गोल्डन बस लाल अक्षर हमारे पे आते थे, हम तो रोज बनाते रहते थे करते रहते थे। इसी बीच हमको लौकिक बाप से वर्षा मिला, हमने चित्रशाला खोली, एक 4-5 आर्टिस्ट एम्प्लॉय कर दिए, उसमें हमने पिक्चर बनाने शुरू कर दिए नए नए पिक्चर्स, और 20 चित्रों का सेट हम लेकर के बाबा के पास आए मधुबन में। अब उसका हिस्ट्री हाल बन चुका था, मम्मा भी थी बाबा भी थे दोनों, तो बाबा मम्मा के टाइम होने और जल्दी सुना रहा हूं आपको, फिर वो वहां आए तो बाबा मम्मा दोनों चित्रों को, दीदी भी थी देख करके वो आए, तो फिर बाबा ने हमको देख अच्छा लगा, ये करेक्शन दी डायरेक्शन दी बाबा वाले, अच्छा लगा बाबा को, ऐसा लगता था बाबा जो सब देख रहे थे। हमको बुलाया अपने कमरे में, बुलाया और कहा मैं गद्दी आबा, अब ये ऐसी गद्दी बिल्कुल था, मैं नीचे बैठने लगा, नहीं बच्चे मेरे साथ बैठो यहां बैठो, गद्दी अपनी गद्दी पर बिठाया, मैं तो संकोच कर रहा था। तो फिर बाबा ने महावाक्य उच्चारण करे, जबरदस्त महावाक्य, जिससे हमारे जीवन को बहुत उमंग उत्साह इतना आया, उससे सेवा बहुत हुई। यानी हम कहते हैं हमें सीखने की बात है, अगर किसी भी व्यक्ति किसी भी आत्मा में आप कुछ अच्छाई देखते हैं, कुछ अच्छा सर्विस करता है, उसका उमंग उत्साह और 4 गुना बढ़ा देना चाहिए, उसको डाउन मत करो और बढ़ाओ। बाबा ने ऐसा किया, बाबा के महावाक्य थे, बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। वहां कहां बोलो, कहां पर, परम धाम में थोड़ा गद्दी है, कहां पर बोलो, गोल्डन एज में, वहां भी तो 8 गद्दियां होंगी ना, पहले बाबा गद्दी पर, हम बच्चे धीरे धीरे गद्दी पे आएंगे, जो बाप की गद्दी यहां पर संभालता है तो वहां भी गद्दी संभालेगा। तो आपने देखो इतना अच्छा कार्य किया, मैंने कहा हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, जैसे जगदीश भाई से कहा था तुम तो एडिटर हो, तो यानी बाबा ने वरदान दिया, चीफ स्पोक्स पर्सन हो, बाबा ने उनको वरदान दिया, पहले क्या थे, एक वो थे यानी बीएड थे, बीएड करके टीचर्स को पढ़ाते थे, लेकिन कोई इतना लेखक तो नहीं थे, लेकिन बाबा के वरदान से कितनी सेवा उसने की है। हमको भी ये वरदान मिला, बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी वहां भी, तो हमने इतना उमंग उसाया, बहुत सेवा की, कितने प्रदर्शनियां बनी, कितने मेले बने, कितने म्यूजियम बने, बात मत पूछिए, लगातार दिन रात काम होता था। फिर बाबा कहते ये बनाओ वो बनाओ, बाबा लिखते थे बच्चे कोट ऑफ आर्मर चित्र बनाओ, बाबा वाले अथॉरिटी और बेफिक्र बादशाह थे, कभी बाबा के चेहरे पर हमने वो नहीं देखा, कभी चिंता की रेखा देखी, बाबा मम्मा दोनों के ऑलवेज निश्चिंत थे, कितना भी कुछ परीक्षा आई, हापुड़ की परीक्षा आई, वो परीक्षा आई, अमृतसर में परीक्षा आई, बाबा जब मम्मा को जो देखते थे सब वो फेल हो जाते थे, कहते यहाँ इतने ऊंची ऊंची ये इतनी हस्तियां ये इतना थोड़ा गलत काम कर दें, क्योंकि पहले क्या था बहनें सब ज्ञान सुनाती थी ना, उस वक्त उल्टी बात लोग उठाते थे, तो ये पहले, अब तो नहीं, अब तो बहुत भाई भी बहुत हैं, बहन पहले ज्यादा बहनें हुआ करती थी, ये देखा इस ये वरदान मिला तो बहुत चित्र बने, बहुत सेवाएं हुई, तो करते करते हम चलते रहे, बाबा से मिलते रहे, आते रहे, चित्र बनाते रहे, और बाबा के आते बाबा मैंने जो सब चीजें उस वक्त निकली, ये बैज कब निकला, बैज का पहले बैज नहीं था, तो हमारे पास दादा विश्व किशोर आए थे, हमें पहला फर्स्ट टाइम ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस दिखाई और ये बैज वहां छपा। ये शिव जो झंडा बना कैसे बना, पहले तो नहीं था, पहले तो हम पहला शिव छपाया था, ये गोल इतना बड़ा, उसमें बिंदी लगाया, पहले नहीं मालूम था कि ज्योति बिंदु है, पहले ऐसे बनाया, तो वो खत्म हुआ था, बाबा ने फिर ज्योति बिंदु कहा, इस प्रकार से कहा, तो फिर हमने एक शिव किरणों वाला बनवाया था चित्र, मैगजीन में निकल हमने बनवाया, और वो उस वक्त नई बात थी, तो वो वहां पर गया मथुरा में, बाबा को मथुरा में उसकी फोटो बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने बहुत सराहना की, बच्चों कितना देखो विचार सागर मथन करते हैं, बहुत बोला, मुरली में बोलते थे बाबा। तो बाबा ने बात एक और भी कह दी, बच्चे बड़े बेबी बुद्धि है। क्यों बेबी कहा कि मुझे दिखाया नहीं है, तो फौरन हम भाग करके दिखाने के लिए आए। तो मतलब कहने का बाबा का बेबी शब्द भी कहना, हमको कई दफा बेबी कहते थे, बेबी शब्द भी कहना इतना मीठा लगता था, देखो बाबा हमें बेबी का, हम तो बाबा के सामने बेबी हैं, बच्चे तो हैं। तो इस प्रकार से चलते चलते ये बाबा अव्यक्त हुए, हम आए, लेकिन किसी को नहीं मालूम था। मैं कहता हूँ हमारे बड़ों बड़ों को मालूम नहीं था कि ये इतना साल चलेगा, बाबा अव्यक्त पार चलेगा, किसी को मालूम था। धीरे धीरे ड्रामा अनुसार रिवील हुआ, तो इस तरह से हम चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, सारे लौकिक परिवार वाले ज्ञान में आ गए, और फिर हमें ये मैगजीन की लिटरेचर की भी सेवा मिल गई। कोई ब्रादर जगदीश जी बहुत होते थे बिजी, अपने फॉरेन टूर में होते थे बहुत, तो हमें ये भी संभाला, बाबा ने ये भी काम दिया। करते 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 फिर 92 में हम कहाँ पहुंच गए, वहां पर जगह कम हुई तो यहाँ शांति मन में आया। तो 92 से लेकर के अभी तक बड़ी दादियों से दीदियों से बड़ा हम बहुत अपने को लक्की समझते हैं, सभी पूर्वजों से हमारा किसी न किसी रूप से पाठ सेवा का पाठ रहा है, चाहे दादा बिश्किशोर हूँ, बड़ी दादी से तो बहुत मिले हम, दादी कहती थी बहुत, मैंने दादी को कहा मैं दादी हम तो बड़े छोटे हैं, इतने भाषण नहीं कर सकते, इतना कुछ नहीं कर सकते, हम तो भोले भाले बाबा के बच्चे हैं। दादी एक दिन मैं एक बाबा दादी से कह रहा था, दादी खामोश हो, कहते भोले भाले कैसा है, इतना बड़ा कारोबार कैसे संभाल हो रहा है ये। मैं दादी ये तो ऊपर वाला कर रहा है, कि यही इंटेलिजेंस है, यही बात सबसे मुख्य है कि आप समझते हैं कि ऊपर वाला कर रहा है, अगर अपने पर आप ले लेंगे तो काम ठीक होगा नहीं। दादी हमेशा कहती थी, हम भी कहते थे, न मान चाहिए, न मर्तबा चाहिए, न महिमा चाहिए, न मनी चाहिए, वी आर टू सर्व, हमें हर एक को कोऑपरेशन देना है, हमारा एम तो ये है, वी डोंट वांट मान, वी डोंट वांट मनी, नो मर्तबा, नो मान, नो महिमा, हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको बोलो, मेरा बाबा चाहिए, एम निकालो सब, ये मान महिमा सब क्या चाहिए, मेरा बाबा चाहिए। उसी बात में लगे हुए हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, हमें कोई बाहर की परीक्षा नहीं आई, आंतरिक तो कोई ना कोई हारे को परीक्षा तो आएगी, ऐसा नहीं कि समूह चले जाएंगे, परीक्षा ना हो तो फिसल जाएंगे। तो बहुत पुरुषार्थ भी किया, हम अब सोचते हैं काफी आगे बढ़ चुके हैं और अब बिल्कुल सामने नजदीक है मंजिल पहुंच जाएंगे। तो हम ये कहते हैं हमको बाप समान बनना है किसी ना किसी तरीके से। बाबा क्या बन गए, कर्मातीत फरिश्ता बन गए। तो आप देखिए हैं आप कर्मातीत, कर्मातीत, कोई फला नहीं, कोई उस दिन बाबा के मुरली में था, एकदम फ्लालेस, वो बाबा ने कहा फूल बनना है, फूलों का वो गुलदस्ता बनना है, ऐसा बनना है। तो आप देखिए कहां तक पहुंचे, बने बाप समान के, कुछ कमी अभी बोलो, कमी है, कितनी फासला है, कितना डिस्टेंस है, हैं बोलो कितना है, ज्यादा है, कम है, कम है, देखो ये कम कहते हैं, अभी फासला तो है ना। तो फासला जो खत्म होगा एक दृढ़ संकल्प से खत्म होगा। मैं बताता हूं क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं हम कितना बाकी पीछे हैं, आप अपना स्वयं कर लो। सबसे पहली है कर्मातीत फरिश्ता बनने की पहली स्टेज, पता क्या है, पहली स्टेज है विकर्मातीत, नो विकर्म नाउ, कोई हमारे से विकर्म ना हो, समझे, कोई दुख ना, कोई हम किसी को दुखी ना करे, किसी को विकर्म ना करे, पाप कर्म ना हो, यह है अगर पहली स्टेज है तो। यह अब ब्राह्मणों में तो होगा नहीं, ये इतने दिन से चल रहे हैं, भट्टी करने भी आए हैं, मैं समझता हूं ये पहली स्टेज को तो पार कर लिया ना, ठीक है पार कर लिया। दूसरी स्टेज क्या है पता, दूसरी स्टेज विकल्पाजीत, नो विकल्प, बाबा कहते हैं अब हमारे ब्राह्मणों के मन बुद्धि में विकल्प नहीं चाहिए, विकल्प से डरना चाहिए, अगर विकल्प आया तो क्या हो जाएगा, आपने जो पुरुषार्थ किया, बैटरी चार्ज की, वो बैटरी डाउन हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए बाबा के हम ब्राह्मण बच्चों को विकल्प को दूर भगाओ, आए तो फटाफट, एक सेकंड भी ना आए, विकल्पाजीत, ठीक है, सभी विकल्पाजीत होंगे, बाबा को भी निश्चय, हम भी समझते हैं फेथ है कि हम सभी ब्राह्मण नो विकल्प, विकल्पों से परे चले गए। तीसरी स्टेज कौन सी है बोलो, तीसरी स्टेज है व्यर्थ आतीत, जो बाबा आप बहुत बार बार कहते हैं व्यर्थ को समाप्त करो, व्यर्थ नहीं चाहिए। और व्यर्थ किसे कहते हैं, हम पहले समझते थे ये क्यों क्या कब कैसे जो है ना, ये क्या क्या, ये व्यर्थ है। दादी गुलदार ने क्लास कराई, ये तो है ही व्यर्थ है। परंतु अभी आप बैठे हैं, जयपुर पहुंच गए, अभी ख्याल आ गया, वो भी व्यर्थ है। अभी खाना खाना ये आया, वो भी व्यर्थ है। जिस समय जो समय की संकल्प की चीज है वो आना ही ठीक है, वो व्यर्थ नहीं है। तो नो व्यर्थ, ये स्टेज है जहां कर्मातीत कम थोड़ी बात है। देश है दे के सब बंधन खत्म। आज बाबा ने क्या कहा, बेगर बन जाओ। बेगर बाबा बेगर बन गए थे ना, तो क्या बन गए, फरिश्ता और देवता बनने वाले हैं। हमको भी इस देह से भी बांध से परे क्या बनना है, बिल्कुल व्यर्थ अतीत, कोई व्यर्थ ना हो, व्यर्थ अतीत बन जाए। बाबा का हर कर्म, हर कदम, हर कर्म, हर बोल और हर संकल्प क्या था, विशेष था, कोई व्यर्थ नहीं था, हर वक्त विशेष। और जिसको वो ऐसे देख भी लेते, बाबा मम ऐसे देखते थे, उड़ जाते थे, इतनी पावर थी, किसी पे हाथ लगा देंगे तो वो बहुत खुश हो जाता था। उनकी वाणी में, उनके संकल्प में सब विशेषता थी। तो हमारा क्या बनना है, बाप समान, तो क्या होना चाहिए, हमारे में विशेषता होनी चाहिए, हमारा हर बोल, हमारा कदम, हमारी सब चीज में विशेषता आ जाए, व्यर्थ समाप्त हो जाए। वो कैसे होगा, उसका सिंपल सा पुरुषार्थ है जो मैं भी कोशिश करता हूं, आप भी कोशिश कीजिए कि हम व्यर्थ को समाप्त नहीं करें, हम समर्थ को बार बार लाए, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठे समर्थ रखें हम। बस कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं, कुछ बहुत डीप जाने की बात भी नहीं, जो बाबा ने कभी ना कभी कुछ कहा है उसको हम उसको रिवाइज करें। हम तो रिवाइज करते हैं चलते फिरते भी। पहला पहला गोल्डन जो संकल्प है शुद्ध कौन सा है, कौन सा है बोलो, मैं शुद्ध आत्मा हूं, केवल शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मस्तक मणि हूं, कर्म इंद्रियों का राजा हूं, अकाल तख्त नशीन हूं। ये सब बाबा ने बातें बताई हैं। इन संकल्पों को लाओ, ये संकल्प आएगा तो दूसरा संकल्प आएगा नहीं। कि एक हमारा मैगजीन में आर्टिकल था, मानव के मन में एक समय पर एक ही संकल्प रहता है, दो इकट्ठे कभी नहीं रह सकते। अगर ये शुद्ध संकल्प हम चला रहे हैं, समर्थ संकल्प चला रहे हैं, और तो संकल्प आएगा नहीं। तो क्या करना है, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते इन शुद्ध संकल्पों की धारा बहाते रहो। बस जब समय मिले अटेंशन करके इसको बार बार लाओ, बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करो। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक रियलाइज नहीं होगा। सुन लीजिए, एक तो ये है मेथड जो बाबा ने पांच स्वरूप बताए हैं, बताया आप करते हैं पांच स्वरूप। बाबा ने होमवर्क दिया था 2 साल पहले, क्या करना है, सारे दिन में 8 बार ये करना है। आप करते हैं, कौन करता है हाथ खड़ा करो, सच सच, बड़ी खुश, बहुत करते हैं, बहुत बाकी कई नहीं भी करते। तो 8 बार ये करो, 8 बार यही करते रहो, ये यात्रा है। 2 प्रकार का योग है, एक है विस्तार में जाना, एक है सार में होना, दोनों करना चाहिए। विस्तार में क्या होता है, तो आप बिजी रहेंगे और कोई और संकल्प आएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव संकल्पों से क्या आती है, 2 चीजें आती है, पावर और प्योरिटी आती है। यू गो ऑन हैविंग पॉजिटिव संकल्प, यही शुद्ध संकल्प, आप में पावर भी आएगी, प्योरिटी भी आएगी। सत्युग में क्या चाहिए, क्राउन ऑफ लाइट, क्राउन ऑफ माइट, यानी पवित्रता चाहिए और पावर चाहिए, दोनों चीजें इन शुद्ध संकल्पों से, पॉजिटिव संकल्पों से आती है। कितना इजी है, बहुत इजी है। तो यही करना और कुछ नहीं। हाँ, बाकी जब याद में बैठते हैं, जब समय मिलता है, और चलो परम धाम में बैठ करके अपने सामने शिव बाबा का वो इमेज बनाओ, अपने को आत्मा समझो, उसे मैं और मेरा बाबा, इसी याद में रहो, कोशिश करो, और कोई संकल्प भी ना आए, मैं और मेरा बाबा, कोई छोटा मोटा कुछ एक आध गुण याद हो कुछ हो, और ज्यादा संकल्पों में मत जाओ। हमने एक दफा दादी गुलदार जी से कहा, दादी ये तो बड़ा इजी मेथड है, 5 स्वरूपों को याद करना, अटेंशन रखो तो बड़ा इजी है, अच्छा होता है। कहते ये भी करो, साथ ये भी करो, और सब संकल्प बढ़ा, क्योंकि ऐसा समय आने वाला अचानक इस संकल्प मैं और मेरा बाबा और कुछ याद ना है। इस प्रकार से शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना भी योग है, सहज योग है, यात्रा है। जब पांच स्वरूप है ना, हम तो वो बहुत करने की कोशिश करते हैं, निराकारी, आकारी, निर्विकारी, अलंकारी और निरहंकारी, ये पांच शब्द है। हम निराकार आत्मा परम धाम सब आ गया, उसके अंदर पहुंच जाओ, बाबा को देखो, याद करो, पिक्चर बनाओ बाबा की, बिंदु और चारों तरफ उसके लाइट, बैकग्राउंड उसका रेड लाइट है, उसको देखो, उसको याद करो, निराकारी स्टेज, अपने आत्मा गुणों को याद करो, बाबा गुणों को याद करो, अपने घर को याद करो, ये निराकारी स्टेज है। निराकारी और आकारी फ्रिश्ता हूं, डबल लाइट फ्रिश्ता हूं, जीवन मुक्त फ्रिश्ता हूं, अव्यक्त फ्रिश्ता हूं, उसको सारी सृष्टि को साकार दो और संबंधों को याद करो। हम तो नौ संबंध याद करते हैं, और प्रैक्टिकल जो हमने बाबा साथ मिलाया, बाबा ने माँ का भी पार्ट बजाया, दोस्त का भी पार्ट हमारे साथ था, हाथ पकड़ के चले, तो वो सब सीन सामने आते हैं। पता है नौ संबंध कौन से हैं? बताऊं आपको, टाइम तो हो गया आपका, फिर भी एक मिनट बता देता हूं। एक है फर्स्ट संबंध, जो है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत जो लवली संबंध है, ही इज बाबा इज अवर डियरेस्ट मदर, माँ है, पहली तो हमारी माँ है। दूसरा है स्वीटेस्ट फादर, तीसरा है हाईएस्ट टीचर, चौथा है होलीएस्ट सदगुरु, पांचवा है अनफेलिंग फ्रेंड, और छठा है सुलोना साजन, सातवा है सुप्रीम सर्जन, आठवा है फेथफुल चाइल्ड, है बच्चा भी है वो, अनुभूति होती है उसकी, हमारी उंगली पकड़ करके भव सागर पार कराने वाला वही है, अंत में और कोई काम नहीं आएगा सिवाय शिव बाबा के। और नौवां है मोस्ट बिलविड माशूक, महबूबा कहते हैं, हम माशूक कहते हैं, हम सब आशिक हैं और किसी में आंख नहीं डूबती, स्वय सत्यम शिवम सुंदरम के उसमें आंख डूबनी चाहिए। इस प्रकार से संबंधों से बाप दादी गुलजार क्या कहती है, क्या है योग, सिंपल, नाचो गाओ खुशी मनाओ। नाचना क्या है, एक पांव यहां एक पांव परम धाम, दूसरा पांव सत्योग में जाए, ऐसे नाचते रहो और गाओ बाबा के महिमा के गीत गाओ, और खुश तो आपको रहना ही है, खुशी जैसी खुराक नहीं, सदा खुश रहो, तो यही वास्तव में योग है। हम कहते हैं अब चलो जल्दी, सामने खड़ा है, विनाश तो होना है, आज नहीं तो कल होगा और नई दुनिया आएगी, हम उसके लिए पुरुषार्थ करें, अब बहुत दूर नहीं, अब नजदीक है, हम सभी मिलकर के पुरुषार्थ करें और नई दुनिया को बहुत नजदीक लाएं। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अनुभव तो जब भी सुनते हैं हमें तो बहुत नया ही लगता है, कि सचमुच वो जमाना क्या था जब बाबा की सेवाओं के लिए हम लोग इधर से उधर भागते रहते थे और बाबा जो कहे, है ना। आज तो हम सोचते हैं अगर अब बन गए बाबा के फिर हमारा क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, बीमार हो गए तो क्या होगा, इंजीनियर बन के भी डिग्री छोड़ के भी ये नहीं सोचा बीमार हो गए तो, पर फिर बीमार भी नहीं होते, आतम भाई कभी बीमार थोड़ी होते हैं नहीं हम जानते हैं ना, हम लोग आतम भाई एक तरह से ज्ञान में हम बचपन के दोस्त हैं, नहीं आतम जी, हम लोग छोटे छोटे थे, कई बार आतम जी हमारे लौकिक घर में भी आते थे, तो इसलिए हम कहते हैं हम ज्ञान के बचपन के दोस्त हैं, हमने तो कभी नहीं देखा बीमार हो रहे हैं कुछ हो रहा है, बाबा की सेवा में हमेशा हमने नाचते खेलते कूदते, ये जो ज्ञान की मस्ती है ना, इस ज्ञान नशा जो बाबा को चढ़ा, जैसे हमने आपको बताया बाबा को नशा चढ़ा, हम लोगों को भी नशा चढ़ा एक्चुअली, हमने तो यही सोचा कि बाबा सत्युग लेने स्थापन करने आया है और हमें बस उसमें मददगार बनना है, तो जब जब भी हम तो सुनते हैं आत्म जी का अनुभव, मेरे को तो हमेशा ही नया लगता है और फिर से वही पुरानी बातें, वही मम्मा वही बाबा सामने आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग मम्मा बाबा से मिले, मम्मा बाबा की गोद ली, मम्मा बाबा के हाथों से टोली खाई, बाबा के साथ पिकनिक की, तो वो दिन भी बहुत प्यारे थे, ये दिन भी बहुत प्यारे हैं। आत्म जी का पुनः बहुत 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 शुक्रिया। अब हम दो मिनट के लिए पहले बाबा की याद में बैठेंगे।
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा